एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में सभी का स्वागत। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी चीज में जो हमारी उंगलियों पर है, हमारी दीवारों पर है, हमारी यादों में है, फोटोग्राफी।
बिल्कुल, और इसके लिए हम स्टीव एडवर्ड्स की किताब फोटोग्राफी को अपना गाइड बना रहे हैं। ये ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ आर्ट सीरीज का हिस्सा है, लेकिन ये किसी आम कला इतिहास की किताब जैसी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये फोटोग्राफी को बिल्कुल अलग और कह सकते हैं ज्यादा गहराई से देखती है।
और आज के जमाने में ये जरूरी भी है ना। हम सब जेब में कैमरा लेके घूम रहे हैं, सोशल मीडिया तस्वीरों से भरा पड़ा है, खबरें वो भी तस्वीरों के जरिए हम तक पहुंचती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम तस्वीरों के समंदर में जी रहे हैं। पर क्या हम कभी रुक कर सोचते हैं कि ये तस्वीरें सिर्फ दुनिया दिखाने के अलावा और क्या क्या कर रही हैं? उनका असली मकसद, उनका रोल क्या है?
हाँ, यही वो बड़ा सवाल है जिसे एडवर्ड्स की किताब पकड़ती है। ये हमें उकसाती है ये सोचने पर कि फोटोग्राफी सिर्फ एक तकनीक या कला का रूप नहीं, बल्कि समाज को गढ़ने वाली एक ताकतवर चीज है। ये पूछती है कि तस्वीरें दुनिया में क्या करती हैं, ना कि सिर्फ क्या दिखाती हैं।
अच्छा,
तो चलिए एडवर्ड्स के साथ इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि तस्वीरें असल में क्या गुल खिलाती हैं।
तो पहले ये बताइए, ये स्टीव एडवर्ड्स हैं कौन और हमें उनकी बात क्यों सुननी चाहिए? उनके नजरिए में ऐसा क्या खास है?
स्टीव एडवर्ड्स एक जाने माने कला इतिहासकार और सांस्कृतिक विचारक हैं, मतलब कल्चरल थियरिस्ट। वो लंदन विश्वविद्यालय के बर्गबेक और ओपन यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं। उनकी खासियत यह है कि वो तस्वीरों को सिर्फ सुंदर या तकनीकी चीजों की तरह नहीं देखते, वो पर्दे के पीछे जाते हैं। वो देखते हैं कि तस्वीरें कैसे समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति से जुड़ी हैं।
अच्छा, मतलब वो सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन सा कैमरा कब आया या किस फोटोग्राफर ने कितनी सुंदर तस्वीर खींची।
बिल्कुल नहीं, उनका नजरिया थोड़ा अलग है, जिसे अकादमिक भाषा में मार्क्सवादी या भौतिकवादी विश्लेषण कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वो इस पर जोर देते हैं कि तस्वीरें कैसे पैसे, सामाजिक वर्ग, उत्पादन के तरीकों और सत्ता के खेल से जुड़ी हैं, ना कि सिर्फ किसी कलाकार के ऊंचे विचारों से। वो पूछते हैं तस्वीरें समाज में क्या काम करती हैं, कैसे वो चीजें बेचने में मदद करती हैं, लोगों पर नियंत्रण रखने का जरिया बनती हैं या हमारी अपनी पहचान बनाने में भूमिका निभाती हैं। यही आलोचनात्मक सोच उन्हें फोटोग्राफी के इतिहास को एक नई रोशनी में देखने में मदद करती है।
ये तो वाकई दिलचस्प लगता है। तो फिर ये किताब असल में किस बारे में है? इसका निचोड़ क्या है, मुख्य आइडिया?
किताब का सबसे बड़ा आइडिया ये है कि फोटोग्राफी का इतिहास, जैसा हमें अक्सर बताया जाता है, वो सिर्फ कुछ महान आविष्कारकों या कलाकारों की कहानी नहीं है। एडवर्ड्स कहते हैं कि फोटोग्राफी शुरू से ही एक सामाजिक गतिविधि रही है, एक सोशल प्रैक्टिस।
सामाजिक गतिविधि मतलब?
इसका मतलब यह कि फोटोग्राफी सिर्फ कैमरा चलाना नहीं है, बल्कि समाज में उसका इस्तेमाल कैसे होता है, शादी की फोटो से लेकर पुलिस रिकॉर्ड तक, और उन तस्वीरों का समाज पर क्या असर पड़ता है, वो सब इसमें शामिल हैं।
तो ये उस आम सोच को सीधी चुनौती देती है कि कैमरा तो बस सच दिखाता है, जैसा है वैसा, वो आईना दिखाने वाली बात।
हाँ बिल्कुल, यही इस किताब का अहम बिंदु है। ये उस मिथक को तोड़ती है कि फोटोग्राफी निष्पक्ष होती है, ऑब्जेक्टिव होती है।
अच्छा,
एडवर्ड्स तर्क देते हैं कि फोटोग्राफी का आविष्कार और उसका फैलना कोई संयोग नहीं था, ये आधुनिक समाज, खासकर औद्योगिक पूंजीवाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए हुआ।
जरूरतें? कैसी जरूरतें?
सोचिए, जैसे जैसे शहर बढ़े, आबादी बढ़ी, तो लोगों का हिसाब किताब रखने, उन्हें पहचानने और नियंत्रित करने के नए तरीके चाहिए थे। बाजार बढ़ा तो चीजें बेचने के लिए लोगों में इच्छा जगाने के नए तरीके चाहिए थे।
हाँ।
कॉलोनियां बनी तो उन पर कब्जा जमाने और वहां के लोगों को समझने, या कह लें अपने हिसाब से समझने के लिए दस्तावेज चाहिए थे। और बदलते समाज में लोगों को अपनी पहचान, अपने परिवार की कहानी बनाने के लिए भी एक जरिया चाहिए था। फोटोग्राफी इन सब कामों में फिट बैठे।
बाप रे, मतलब हमारी प्यारी सी फैमिली फोटो से लेकर पुलिस के रिकॉर्ड में लगी तस्वीर,
हाँ,
या किसी आर्ट गैलरी में टंगी फोटो तक, सबके पीछे एक सामाजिक और आर्थिक कहानी छुपी है।
बिल्कुल, उन्हें समझने के लिए सिर्फ तस्वीर देखना काफी नहीं है, बल्कि ये देखना होगा कि वो तस्वीर किस माहौल में बनी, क्यों बनी और कैसे इस्तेमाल हुई। ये किताब हमें वही चश्मा दे रही है एक तरह से।
उन मशहूर नामों डेगेर और टैल्बर्ट से शुरू होती है जिन्हें हम फोटोग्राफी का आविष्कारक मानते हैं।
एडवर्ड्स शुरुआत ही इस महान आविष्कारक वाली कहानी पर सवाल उठाकर करते हैं। पहले अध्याय में वो कहते हैं कि 1830 के दशक में फोटोग्राफी का आना कोई अचानक चमत्कार नहीं था, या किसी अकेले जीनियस का काम नहीं था, बल्कि ये उस समय की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों का नतीजा था। औद्योगिक क्रांति चल रही थी, शहर बढ़ रहे थे, एक नया मध्यम वर्ग उभर रहा था जिसे अपनी पहचान बनाने के लिए सस्ते और सटीक पोर्ट्रेट चाहिए थे। विज्ञान का बोलबाला था, जिसे प्रत्यक्षवाद की संस्कृति कहते हैं, तो चीजों को जस का तस रिकॉर्ड करने वाले उपकरणों की मांग थी।
सरकारों को जमीन का सर्वे करने, आबादी का हिसाब रखने के नए तरीके चाहिए थे।
अच्छा अच्छा, डगेरे और टैलबर्ट से वैज्ञानिक नहीं थे, वो बिजनेसमैन भी थे जिन्होंने इस मांग को समझा। तो कैमरा असल में मशीनी युग की एक परफेक्ट मशीन थी, तर्कसंगत, चीजों की हूबहू नकल बनाने वाली।
अच्छा, तो आविष्कार के पीछे भी सामाजिक जरूरतें थीं, और फिर वो बहस शुरू हुई होगी कि फोटोग्राफी कला है या नहीं, इस पर किताब क्या कहती है।
हाँ, अगला हिस्सा इसी दिलचस्प बहस पर है, आर्ट एंड कॉमर्स वाला। 19वीं सदी में कुछ फोटोग्राफर थे जिन्हें पिक्टोरियलिस्ट कहा जाता है, जैसे ऑस्कर राइजलैंडर और हेनरी पीच रॉबिन्सन। उन्होंने पेंटिंग जैसी दिखने वाली तस्वीरें बनाने की बहुत कोशिश की, कई नेगेटिव्स को मिलाकर एक तस्वीर बनाते थे ताकि फोटोग्राफी को ऊंची कला का दर्जा मिल सके। एडवर्ड्स कहते हैं कि यह सिर्फ कला की बात नहीं थी, ये एक तरह से अमीरों या कला जगत के लोगों की कोशिश थी अपनी कलात्मक फोटोग्राफी को उन सस्ती आम तस्वीरों से अलग और बेहतर दिखाने की जो बाजार में मिलने लगी थी।
मतलब ये एक सामाजिक स्टेटस बनाने की रणनीति भी थी।
हाँ बिल्कुल, यहीं से फोटोग्राफी की वो फांग शुरू होती है जो आज तक है। एक तरफ वो सच दिखाने वाला वैज्ञानिक औजार मानी जाती है, दूसरी तरफ वो कलाकार की अभिव्यक्ति का माध्यम।
ये तो सोचने वाली बात है, कला के पीछे भी सामाजिक गणित। अच्छा, अगर तस्वीरें सिर्फ कला नहीं है जैसा आपने कहा, तो उनका इस्तेमाल और किन ताकतवर तरीकों से हुआ? क्या सत्ता ने भी कैमरे को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, जैसे पावर एंड सर्वेलेंस वाले चैप्टर में?
बिल्कुल, और ये किताब का एक बहुत अहम हिस्सा है, फैक्ट्स एंड फेसेस वाला भी। एडवर्ड्स दिखाते हैं कि कैसे कैमरे की सच्चाई दिखाने वाली छवि का इस्तेमाल संस्थाओं ने लोगों को बांटने, पहचानने और नियंत्रित करने के लिए किया। अल्फोंस बर्टलिन का उदाहरण बहुत जबरदस्त है, उसने पेरिस पुलिस के लिए मगशॉट सिस्टम ईजाद किया।
मगशॉट, वो जो अपराधियों की तस्वीरें होती हैं?
हाँ वही, आगे से और साइड से ली गई तस्वीरें। इससे क्या हुआ, इंसान का चेहरा एक डेटा पॉइंट बन गया जिसे फाइल किया जा सकता था, जिससे अपराधी वर्ग को पहचानना और उन पर नजर रखना आसान हो गया।
बाप रे।
इसी तरह मनोविज्ञान में पागलपन के लक्षणों को दिखाने के लिए तस्वीरें ली गईं। मानव विज्ञान में औपनिवेशिक प्रजातियों को वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत करने के लिए, जो असल में नस्लवादी वर्गीकरण था, और यूजेनिक्स जैसे खतरनाक विचारों को बढ़ावा देने के लिए कैमरे का खूब इस्तेमाल हुआ।
यूजेनिक्स, वो नस्ल सुधार वाला?
हाँ, एडवर्ड जोर देकर कहते हैं कि कैमरा यहां सिर्फ देख नहीं रहा था, वो सक्रिय रूप से सामाजिक भेदभाव बनाने और उसे वैज्ञानिक जामा पहनाने में मदद कर रहा था।
बाप रे, कैमरे का ऐसा इस्तेमाल, ये तो डरावना भी है। और दुनिया घूमने वाले फोटोग्राफर जो दूर दराज की जगहों की तस्वीरें लाते थे या जो सामाजिक बुराइयों को दिखाते थे, उनके बारे में क्या?
किताब इस पर भी रोशनी डालती है, द वर्ल्ड इन पिक्चर्स वाला हिस्सा। वो उन फोटोग्राफर की बात करती हैं जो 19वीं सेंचुरी में यूरोप और अमेरिका के उपनिवेशों और सैन्य अभियानों के साथ गए, जैसे अमेरिकी पश्चिम, मध्य पूर्व, भारत। एडवर्ड्स तर्क देते हैं कि उनकी खींची ही लैंडस्केप तस्वीरें, जो देखने में बहुत सुंदर और शांत लगती हैं।
हाँ, बहुत खूबसूरत होती हैं वो।
हाँ, पर वो असल में चुपचाप एक कहानी कह रही थी कि ये जमीनें खाली हैं, पिछड़ी हुई हैं और उन पर कब्जा करना जायज है, एक तरह का वैचारिक काम कर रही थी।
अच्छा,
फिर वो जैकब रीस और लुइस हाइन जैसे फोटोग्राफरों पर आते हैं जिन्होंने शहरों की भयानक गरीबी और बाल मजदूरी को अपनी तस्वीरों से दिखाया। एडवर्ड्स मानते हैं कि उनका काम समाज सुधार के लिए जरूरी था, लेकिन वो ये भी दिखाते हैं कि उनकी तस्वीरें कई बार भावुकता या बनी बनाई छवियों, मतलब स्टीरियोटाइप्स पर टिकी होती थी, और ये तस्वीरें खींचने वाले, जो अक्सर मध्यम वर्ग के होते थे, और जिनकी तस्वीरें खींची जा रही थी, जो गरीब या हाशिए पर थे, उनके बीच के शक्ति संतुलन को भी उजागर करती थी।
हाँ, ये बात तो है, किसने तय किया कि गरीबी कैसी दिखेगी?
बिल्कुल, तस्वीर का क्या असर होगा, ये सवाल महत्वपूर्ण है।
और हम जैसे आम लोगों का क्या, जब कोडैक कैमरा आया तब तो सब कुछ बदल गया होगा, घर घर में तस्वीरें खींचने लगी, वो वर्नैक्युलर वाला चैप्टर।
हाँ, कोडैक कैमरा 1888 एक क्रांति जैसा था। जॉर्ज ईस्टमैन का नारा था, आप बटन दबाएं, बाकी हम करेंगे। इसने फोटोग्राफी को कुछ माहिरों के हाथ से निकालकर आम लोगों का शौक बना दिया, मैस कंज्यूमर हॉबी। एडवर्ड्स इसे उपभोक्ता पूंजीवाद के फैलने का एक अहम मोड़ मानते हैं, कंज्यूमर कैपिटलिज्म। अब यादें भी खरीदी बेची जा सकती थी, कैमरे, फिल्म, डेवलपिंग एल्बम।
सही बात है।
फैमिली एल्बम आधुनिक परिवार की पहचान बनाने का मुख्य जरिया बन गया। हम छुट्टियों, जन्मदिनों, शादियों की तस्वीरें सहेजने लगे, लेकिन एडवर्ड्स याद दिलाते हैं कि ये तस्वीरें भी नेचुरल नहीं थीं। हम अक्सर वैसे ही पोज देते थे, उन्हीं मौकों की तस्वीरें खींचते थे जो समाज या विज्ञापन हमें सिखाते थे।
हाँ, ये तो है, सब एक जैसे पोज देते हैं।
बिल्कुल, ये आम या रोजमर्रा की फोटोग्राफी जो हमें अपनी लगती है, असल में फोटोग्राफी इंडस्ट्री और आदर्श परिवार की सामाजिक सोच से गहराई से जुड़ी थी। इसने हमारी पहचान, हम कौन हैं, हमारा परिवार कैसा है, हमारा समाज कैसा है, को बनाने और दिखाने में बड़ी भूमिका निभाई, आइडेंटिटी बनाने में।
इस बात से मुझे याद आया कि कैसे आज भी हम सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट जिंदगी की तस्वीरें डालते हैं। खैर, इसके बाद फोटोग्राफी में मॉडर्निज्म का दौर आया, उसने क्या बदला?
बिल्कुल सही कनेक्शन है। मॉडर्निज्म एक तरह की प्रतिक्रिया थी, द मॉडर्निस्ट एलिमेंट। 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ फोटोग्राफर पिक्टोरियलिज्म की धुंधली पेंटिंग जैसी तस्वीरों और कोडेक से आई आम शौकिया तस्वीरों की बाढ़ दोनों से ऊब गए थे। अमेरिका में एल्फ्रेड स्टीगलिट्ज़ और पॉल स्ट्रैंड जैसे लोगों ने स्ट्रेट फोटोग्राफी की वकालत की।
स्ट्रेट फोटोग्राफी
मतलब एकदम शार्प फोकस, साफ प्रिंट, कोई बनावट नहीं। उनका मानना था कि फोटोग्राफी की अपनी खासियत है, उसे पेंटिंग की नकल करने की जरूरत नहीं। यूरोप में नजरिया और भी क्रांतिकारी था। रूसी कंस्ट्रक्टिविस्ट या जर्मनी के बहुत स्कूल के कलाकार कैमरे को सिर्फ दुनिया दिखाने का नहीं बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया बदलने वाला औजार मानते थे।
अच्छा,
वो नए एंगल, क्लोजअप, फोटो मोन्टाज जैसे प्रयोग कर रहे थे ताकि आधुनिक शहर की तेज रफ्तार, शोर और बिखराव को पकड़ सकें। उनके लिए कैमरा बदलाव का हथियार था।
और फिर ये तस्वीरें छपने लगी बड़े पैमाने पर, पत्रिकाओं में, इसका क्या असर हुआ?
पिक्चर्स इन प्रिंट, ये भी एक बड़ा बदलाव था। 1920-30 के दशक में लाइफ या पिक्चर पोस्ट जैसी पिक्चर मैगजीन बहुत लोकप्रिय हुई। छोटे कैमरे आ गए थे, प्रिंटिंग तकनीक बेहतर हो गई थी, तो फोटो कहानियां, मतलब फोटो एसेस, छापना आसान हो गया। एडवर्ड्स यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताते हैं, किसी तस्वीर का मतलब सिर्फ तस्वीर में नहीं होता बल्कि इस बात में होता है कि उसे कैसे पेश किया गया है। मैगजीन में उसका साइज क्या है, उसके नीचे क्या लिखा है, कैप्शन क्या है, उसके आसपास कौन सी और तस्वीरें या लेख हैं, ये सब मिलकर उसका मतलब तय करते हैं।
कॉन्टेक्स्ट इज किंग, जैसा कहते हैं।
बिल्कुल, अमेरिका का फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन FSA प्रोजेक्ट इसका क्लासिक उदाहरण है। महामंदी के दौरान वॉकर इवांस और डोरोथिया लैंग जैसे फोटोग्राफरों ने गरीबी की बहुत शक्तिशाली तस्वीरें खींची। एडवर्ड्स दिखाते हैं कि ये तस्वीरें सच्ची होते हुए भी सरकार की नीतियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बहुत सोच समझकर चुनी गईं, काटी छाटी गईं और कैप्शन के साथ पेश की गईं।
अच्छा, मतलब प्रोपेगेंडा जैसा
कह सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि तस्वीरें शायद ही कभी अकेली बोलती हैं, उन्हें बुलवाया जाता है। और आखिर में किताब हमें आज के डिजिटल दौर तक ले आती है, द रिटर्न ऑफ द रियल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस।
हाँ, आखिरी अध्याय पोस्ट मॉडर्न सोच पर बात करता है जो फोटोग्राफी की सच्चाई के दावे पर ही गहरा सवाल उठाती है। सिंधी शर्मन जैसे कलाकार हैं जो फोटोग्राफी का इस्तेमाल करके दिखाते हैं कि समाज में औरतों की जो छवियां फैली हैं वो कितनी बनावटी हैं।
सही।
फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई जिससे तस्वीरों में हेर फेर करना बच्चों का खेल हो गया, इससे सच्चाई का दावा और कमजोर हुआ।
हाँ, बिल्कुल।
लेकिन मजे की बात यह है कि इसी दौर में कैमरा फोन और सोशल मीडिया ने रोजमर्रा की असली लगने वाली तस्वीरों की बाढ़ ला दी है। हर कोई अपनी जिंदगी का सच दिखा रहा है।
बिल्कुल, एडवर्ड्स का मानना है कि फोटोग्राफी के जो बुनियादी तनाव किताब में शुरू से दिखाए गए हैं, जैसे बनावट बनाम सच्चाई, नियंत्रण बनाम आजादी, धंधा बनाम निजी यादें, वो डिजिटल युग में खत्म नहीं हुए बल्कि और ज्यादा उलझ गए हैं शायद।
वाह, ये तो फोटोग्राफी के इतिहास का एक बिल्कुल अलग और सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी, की थीम्स क्या हैं?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि फोटोग्राफी पूंजीवाद और आधुनिक समाज की देन है और ये हमेशा सामाजिक रूप से बनती है। ये सिर्फ एक मशीन का आविष्कार नहीं था बल्कि बाजार, उद्योग और लोगों की बदलती जरूरतों से पैदा हुई चीज है। चाहे वो सस्ते पोर्ट्रेट की मांग हो या कोडेक का यादों को बेचने का बिजनेस। और तस्वीरें कभी हवा में नहीं बनती, वो हमेशा समाज के नजरिए, ताकत के रिश्तों और उस समय की सोच को दिखाती हैं और बनाती भी हैं।
और दूसरी बात जो मुझे बहुत अहम लगी वो है फोटोग्राफिक सच्चाई या निष्पक्षता का मिथक।
हाँ,
हम अक्सर मान लेते हैं कि कैमरा झूठ नहीं बोलता।
हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
लेकिन एडवर्ड दिखाते हैं कि हर तस्वीर में चुनाव होता है, क्या फ्रेम में रखना है, क्या बाहर। हर तस्वीर एक नजरिए से ली जाती है।
और कमाल की बात यह है कि इसी सच्चाई के भ्रम की वजह से फोटोग्राफी इतनी ताकतवर बन जाती है विज्ञान में, खबरों में, पुलिस के काम में, क्योंकि हम उस पर आसानी से यकीन कर लेते हैं।
तीसरा, फोटोग्राफी हमेशा से सत्ता और सामाजिक नियंत्रण का एक औजार रही है, चाहे वो पुलिस का अपराधियों का रिकॉर्ड बनाना हो, या कॉलोनियों में लोगों को समझने के लिए उनकी तस्वीरें लेना, या फिर विज्ञापनों के जरिए हमें बताना कि हमें क्या खरीदना चाहिए। तस्वीर लेने की क्रिया में अक्सर एक शक्ति का खेल शामिल होता है, किसके पास कैमरा है, किसकी तस्वीर ली जा रही है, और उस तस्वीर का इस्तेमाल कौन और कैसे करेगा। चौथा, कला और दस्तावेज के बीच की वो धुंधली रेखा और तनाव किताब बार बार दिखाती है कि ये कोई साफ बंटवारा नहीं है आर्ट और डॉक्यूमेंट के बीच।
हाँ, कला के लिए खींची गई तस्वीर भी अक्सर सच्ची लगने के कारण असरदार होती है, और किसी घटना को दर्ज करने वाली तस्वीर भी लगभग हमेशा सोच समझ कर, मतलब कलात्मक ढंग से बनाई जाती है। ये दुविधा फोटोग्राफी के साथ हमेशा चलती है।
और पांचवा,
संदर्भ ही राजा है, प्राइमेसी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एक ही तस्वीर का मतलब पूरी तरह बदल सकता है, बस ये बदल कर कि उसे कहाँ दिखाया जा रहा है। पुलिस की फाइल में वो सबूत है, परिवार के एल्बम में वो प्यार भरी याद है, म्यूजियम में वो कला है, अखबार में वो खबर है। तस्वीर अकेली कुछ नहीं कहती, उसका मतलब उसे दिए गए फ्रेमवर्क से बनता है।
क्या किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो इन बातों को और यादगार बनाते हो, कुछ कोर स्टेटमेंट्स?
हाँ, सीधे वाक्य शायद ना हो, पर एडवर्ड्स के कुछ मूल तर्क हैं जिन्हें हम इस तरह समझ सकते हैं। पहला, फोटोग्राफी का जन्म किसी अकेले जीनियस के दिमाग से नहीं, बल्कि 19वीं सदी के औद्योगिक समाज की ठोस जरूरतों, जैसे चीज़ों की नकल बनाना, लोगों का रिकॉर्ड रखना, दूर की चीज़ों को पास लाना से हुआ। ये उस महान आविष्कारक वाली कहानी को तोड़ता है और फोटोग्राफी को सामाजिक आर्थिक जड़ों से जोड़ता है।
दूसरा, कैमरे के सच दिखाने पर हमारा भरोसा ही उसका सबसे बड़ा धोखा है। हर तस्वीर एक रचना है जिसे बनाने वाले के इरादे, नज़रिए और ताकत ने शक्ल दी है। ये हमें हर तस्वीर पर सवाल उठाना सिखाता है, ये किसका सच है और ये सच क्या काम कर रहा है।
तीसरा, पुलिस रिकॉर्ड से लेकर फैमिली एल्बम तक, फोटोग्राफी समाज के तय किए गए मानकों के हिसाब से इंसानों को बांटने, उन पर नज़र रखने और उन्हें सामान्य बनाने का एक मुख्य जरिया रही है। ये सरकारी निगरानी और हमारी निजी जिंदगी की तस्वीरों को एक ही नज़रिए से देखता है। दोनों समाज के नियम कायदे बनाने और लागू करने में भूमिका निभाते हैं।
और चौथा, कैमरा सिर्फ सच्चाई को रिकॉर्ड नहीं करता, वो उस सच्चाई को बनाने में भी हिस्सा लेता है जिसे वो दिखाता हुआ लगता है। ये फोटोग्राफी के सक्रिय रोल पर जोर देता है। तस्वीरें दुनिया को सिर्फ दर्शाती नहीं हैं, वो दुनिया को हमारी नज़रों में बनाती भी हैं। ये तो बहुत गहरे विचार हैं। अब सवाल ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन विचारों का क्या करें, इनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस।
सबसे पहला और ज़रूरी इस्तेमाल है अपनी देखने की समझ, यानी विजुअल लिटरेसी को बढ़ाना। आज हम तस्वीरों से घिरे हैं, व्हाट्सएप पर, न्यूज़ में, विज्ञापनों में। एडवर्ड्स का नज़रिया हमें सिखाता है कि हर तस्वीर को थोड़ा रुक कर देखें, पूछें ये किसने खींची, क्यों खींची, इसे कौन दिखा रहा है, फ्रेम से क्या बाहर रखा गया है, इसके साथ क्या कहानी बताई जा रही है। ये आदत हमें फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और विज्ञापनों के झांसे में आने से बचा सकती है।
और सोशल मीडिया, आजकल तो हमारी आधी जिंदगी वहीं तस्वीरों में बीतती है,
मदद करती है कि हम कैसे ऑनलाइन अपनी एक खास छवि, एक पर्सोना बना रहे हैं। हम अक्सर वही तस्वीरें डालते हैं जो खुशी, कामयाबी या घूमने फिरने जैसी चीजें दिखाती हैं, यानी समाज के तय किए हुए अच्छे पल।
हाँ, ये सच है।
हम अनजाने में अपनी यादों को एक ऐसी कंपनी के प्लेटफॉर्म पर सजा रहे हैं जिसका असली मकसद पैसा कमाना है। ये हमें अपनी ऑनलाइन आदतों पर ज्यादा सोचने को मजबूर करता है।
और विज्ञापनों या राजनीतिक खबरों में तस्वीरों को समझने में,
यकीनन, ये किताब हमें वो औजार देती है जिससे हम समझ सकें कि विज्ञापन कैसे हमारी इच्छाओं को जगाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या कैसे नेता और पार्टियां अपनी बात कहने या माहौल बनाने के लिए खास तरह की तस्वीरों का इस्तेमाल करती हैं। जब हम फोटोग्राफी को सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि एक बयान या तर्क की तरह देखना सीखते हैं, तो हम तस्वीरों के जरिए होने वाले खेल को बेहतर समझ पाते हैं।
सही कहा, हम ज्यादा जागरूक दर्शक और नागरिक बन सकते हैं। तो चलिए अब अंत की ओर बढ़ते हैं। इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही, फाइनल टेकअवेज?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि कोई भी तस्वीर मासूम नहीं होती, नो फोटोग्राफ इज एवर इनोसेंट. हर तस्वीर के पीछे इरादे, रिश्ते, पैसे और ताकत का एक जाल बना होता है, चाहे वो कितनी भी सीधी सादी क्यों ना लगे. हमें अपना सवाल बदलना होगा, सिर्फ ये नहीं पूछना कि ये किसकी तस्वीर है, बल्कि ये पूछना कि ये तस्वीर दुनिया में क्या कर रही है, ये क्या असर डाल रही है.
और मेरे लिए सबसे यादगार बात है फोटोग्राफी की उस सहजता या स्वाभाविकता पर हमेशा शक करना, जिसे हम अक्सर मान लेते हैं. कैमरा कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बस सच्चाई को कैद कर ले. वो सच्चाई को बनाने का, उसे एक शक्ल देने का औजार है. अक्सर तस्वीर का असली मतलब लेंस के सामने वाली चीज में नहीं, बल्कि लेंस के पीछे की सोच, इरादे और राजनीति में छुपा होता है. इस किताब को पढ़ने के बाद हम तस्वीरों को सिर्फ देखने वाले नहीं रहते, बल्कि उन्हें पढ़ने वाले, उनके पीछे की कहानी समझने वाले बन जाते हैं. और आज की दुनिया में ये हुनर बहुत जरूरी है.
बिल्कुल. मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है. ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है.